आज है 10 अगस्त दिन बुधवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। भारत प्रशासित कश्मीर में अशांति जारी, राज्यसभा में होगी कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा। महाराष्ट्र पुलिस ने इस्लाम प्रचारक डॉक्टर जाकिर नायक पर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। इरोम शर्मिला ने तोड़ी अपनी भूख हड़ताल, कितनी बदली इन 16 सालों में उनकी जिंदगी।
बहुत बदल गया इरोम शर्मिला, प्रिजन के अंदर बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, गीता पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, बाइबल पढ़ा है। पहला तो हम लोग से बहुत पूछे थे कोई भी फैसला करने में, आजकल तो एकदम इसका एक इंडिपेंडेंट माइंड हो गया।
और रियो ओलंपिक में मुक्केबाज विकास कृष्ण यादव पहुंचे प्री क्वार्टर फाइनल में।
हालांकि पंची जो एक्सचेंज तो नॉर्मली था, दो चार मेरे को लेके दो चार मिनट उसके मारे, लेकिन जो मैंने मारे ब्लो बिल्कुल फास्ट मारे। मेरे को ये था कि मैं उसको डोमिनेट नहीं होने दूं अपने आप, और स्टार्टिंग के दौरान जीते तो मेरा टारगेट पूरा हो चुका था, लास्ट राउंड से मेरे को टाइम पास करना था।
लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद भारत प्रशासित कश्मीर के तनावपूर्ण हालात पर राज्यसभा में आज चर्चा होगी। भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथों बुरहान वानी की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है और सुरक्षा बलों की फायरिंग में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में तनाव के माहौल पर हाल ही में कहा कि वो कश्मीरी युवाओं को मुख्य धारा में आने की अपील करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के अलप्पो शहर में तुरंत युद्ध विराम लागू करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अलप्पो में सरकार समर्थित सेना और विद्रोहियों की जबरदस्त लड़ाई की वजह से 20 लाख से ज्यादा लोग पानी और बिजली की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। ये भी चेतावनी दी गई है कि खाने और दवाओं की भी भारी कमी हो गई है, जबकि कई लोग शहर में फंसे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के महासचिव स्टीफन ओब्रायन ने कहा कि युद्ध विराम के बिना सहायता पहुंचाना संभव नहीं है।
यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज एंड आवर पार्टनर्स रिमेन रेडी टू असिस्ट।
संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और सहयोगी अलप्पो में आम लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। खाना, दवाएं, एम्बुलेंस, जनरेटर के लिए तेल, पानी और अन्य चीजें तैयार हैं। हम उपलब्ध रास्तों से मदद पहुंचाते रहेंगे। तुर्की की सीमा से भी मदद पहुंचाई जाएगी। अगर सुरक्षित रास्ता मिले तो 24 से 48 घंटों में हम सारा सामान पहुंचा सकते हैं। ये थे स्टीफन ओब्रायन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राजधानी सना में कई महीनों बाद फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों के बाद सना में हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा है कि हमलों के निशाने पर सभी सैनिक ठिकाने थे, लेकिन यमन से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक इन ताजा हमलों में कम से कम 15 नागरिकों की मौत हो गई है। मरने वालों में पश्चिम सना की एक फूड फैक्ट्री में काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। अमरीका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बंदूक रखने के अधिकार का समर्थन करने वाले लोगों से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को रोकने की अपील कर विवाद खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बंदूक रखने के अधिकार का समर्थन करने वालों को हिलरी क्लिंटन को उनके संवैधानिक अधिकार को वापस लेने से रोकना होगा। हिलरी क्लिंटन के समर्थकों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को खतरनाक बताया है। रियो डी जेनेरो में खेले जा रहे 31वें ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक्स में अमेरिका की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। सिमोन बायल्स के नेतृत्व में टीम ने रूस की टीम को बड़े अंतर से पछाड़ दिया है। रूस की टीम को रजत पदक तो चीन को कांस्य पदक मिला है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर से, जहां पिछले 32 दिनों से कर्फ्यू, हिंसा और अशांति जारी है। कल कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करने के मुद्दे पर राज्यसभा में बहस हुई। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का कहना था कि कश्मीर एक जटिल मुद्दा है और आंतरिक सुरक्षा के बारे में जो जानकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को होगी वो किसी और को पता नहीं होगी। तो इधर जेडीयू के नेता शरद यादव ने सरकार से उसकी कश्मीर रणनीति के बारे में पूछा। इसके बाद गृहमंत्री ने आश्वासन दिया कि आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग करता रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी संसद में तो नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में हुई रैली में तोड़ी और शांति की अपील करते हुए कहा कि हर भारतीय कश्मीर से प्यार करता है। पूरे ब्यौरे के साथ दिल्ली से निखिल रंजन।
भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बल के हाथों बुरहान वानी की मौत के बाद भड़के आंदोलन के 32 दिन बीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। इस आंदोलन में पुलिस के साथ हुई झड़प में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन पहले ही राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर कश्मीर का मसला प्यार मोहब्बत से सुलझाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कश्मीर को शांति, एकता और सद्भावना की जरूरत है। उन्होंने कश्मीरी युवाओं का आह्वान किया कि वो मुख्य धारा में आए।
शांति, एकता और सद्भावना, और मैं खास करके कश्मीर के युवकों को आह्वान करता हूँ, आइए मेरे दोस्तों, आइए हम सब मिलकर के कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग बना करके रखे, इस सपने को लेकर के चले। इंसानियत, कश्मीरियत, इसको दाग नहीं लगने दिया जाएगा। जमहूरियत का रास्ता ही है, बातचीत का रास्ता है, संवाद का रास्ता है, लोकतंत्र के उसूलों का रास्ता है।
प्रधानमंत्री के शायद इस आह्वान का ही असर था कि संसद में कई दिनों से कश्मीर पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी नेताओं की बात मान ली गई। ऊपरी सदन राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सांसदों की मांग के जवाब में कहा,
सदन की भावना और सदन के नेताओं का जो उसमें विचार है वो प्राथमिकता है। अभी हमने बात
अभी सुनिए,
हम जवाब देते हैं, संतुष्ट होंगे।
सुनिए सुनिए,
तो हमने अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से जो अभी क्वेश्चन आवर चल रहा है लोकसभा में, उनसे जानकारी ली, तो वो कल के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं और कल की चर्चा तय कर लिया।
विपक्ष केंद्र सरकार के रवैये से तो संतुष्ट नहीं, लेकिन चर्चा की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप जरूर हो गया है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद भारत सरकार का अमला शायद अब कश्मीर के मुद्दे पर गंभीरता से हरकत में आएगा। हालांकि आंदोलन को हवा दे रहे अलगाववादियों ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है। राज्य की सरकार और सुरक्षा बल अशांति को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं और विश्लेषकों ने स्थिति को बीते कई सालों में सबसे बुरा बताया है।
कश्मीर के मुद्दे पर संसद में होगी बहस, ये थे निखिल रंजन। राज्य में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है और राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उम्मीद जताई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के लोगों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर का दिल जीतने के लिए हुई कोशिशों का उल्लेख किया और इन कोशिशों को फिर से दोहराने की बात कही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री का ताज़ा बयान कितनी उम्मीदें देगा, यही सवाल पूछा हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने श्रीनगर में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर से।
बात ही योगी बड़ी देर की मेहरबान आते आते, बट स्टिल बेटर लेट देन नेवर। ये जो पिछले 32 दिन से कश्मीर में हो रहा है, 60 के करीब लोग मारे गए हैं, हजारों जख्मी हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल बेतहाशा हो रहा है, कश्मीर की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, हालात बहुत खराब है। ऐसे में यूं होना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर एकदम से कॉल ले लें और एकदम से इंटरफेयर करें हालात को सुधारने के लिए। खैर, जल्दी हो नहीं पाया, लेकिन अब उन्होंने बात की है तो उम्मीद ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलजुल के ऐसे स्टेप्स उठाएं, ऐसे इकदाम उठाएं जिनसे हालात में सुधार होने की उम्मीद बन सकती है।
संसद में चर्चा करने के लिए भी तैयार हो गई है केंद्र सरकार, और अब शायद उनको लग रहा है कि कुछ उनकी तरफ से किया जाना चाहिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं कश्मीर के लोग, क्या हो सकता है अभी तुरंत?
जहां तक यहां ग्राउंड की सिचुएशन आज की बनी हुई है, लोगों में कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके बड़े ही तलख तजुर्बात हैं, बड़ी ही बिटर एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट की। 2010 एजिटेशन को ले लीजिए, 120 के करीब लोग मारे गए जिनमें ज्यादातर नौजवान थे। तो उसके बाद होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने एक टीम मुतयन की इंटरलोकेटर्स की, तीन लोगों की, उनसे कहा गया कि वो ग्राउंड पे जाके कश्मीरियों से बात करें, स्टेक होल्डर से बात करें और फिर रिपोर्ट दें कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए ताकि कश्मीर में सुधार आ जाए। वो रिपोर्ट तैयार हो गई, वो होम मिनिस्ट्री को प्रेजेंट कर दी गई और आज तक उस पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो कैसे कश्मीरी में ये उम्मीद होगी कि अब की बार कुछ होगा? हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल, जाती सवाल ये ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर बोले हैं और पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है शायद अगर इसको आज तक लगता था 32 दिन पहले न्यू दिल्ली इसको सीरियसली ले नहीं रही है, लेकिन आज लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीरियसनेस आ रही है। आज लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह एहसास हो गया है ये कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं, इट इज बिगर देन लॉ एंड ऑर्डर।
अलगाववादी नेता क्या कह रहे हैं?
देखिए, अलगाववादी नेताओं का जो कुछ भी एजेंडा है वो तो क्लियर है, वो तो उनका तो ये मानना है कि कश्मीर किसी भी हाल हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना है इसको। उनका तो ये मानना है कि यूएन रेजोल्यूशंस के तहत रेफरेंडम कराया जाए और लोगों को उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, ये उनका हमेशा सा स्टांस रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उनमें ये लचक भी रही है कि अगर ट्राइलेटर डायलॉग हो पाकिस्तान इंडिया और कश्मीरी लीडरशिप के, तो वो उसके लिए भी तैयार है।
आप जो कह रहे हैं वो बड़ी बात है, वो शायद अभी तुरंत नहीं होने जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी तुरंत क्या कुछ किया जा सकता है ताकि वहाँ शांति आए।
मेरा मानना है कि अगर शुरुआत इससे की जाए कि जिस तरह की होम मिनिस्टर ने आके कहा था कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आप पैलेट गन्स को रोक दीजिए। मॉब कंट्रोल में यहाँ की फोर्सेज जो हैं सीआरपीएफ पुलिस वगैरह फेल हो गए हैं। मुझे लगता है कि उनने कोई सबक सीखा नहीं है 2008 और 2010 के एजिटेशन के बाद। उनमें मॉब कंट्रोल करने का कोई सलीका नहीं है कि जितनी गोलियां चली हैं वो अपर बॉडी में लगी हुई हैं। क्यों? ये चीज़ें अगर सुधार ली जाए, अगर शुरुआत इसी से किया जाए कि पैलेट गन रोक दिया जाए, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पे बहस शुरू की जाए, देखा जाए कि कहां कहां से हटाया जाना चाहिए, ये कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं।
भारत प्रशासित कश्मीर में विश्वास बहाली के कदम उठाए जाने चाहिए। थे वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
महाराष्ट्र पुलिस ने विवादों में घिरे इस्लाम प्रचारक डॉक्टर जाकिर नायक और उनकी संस्था की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि रिपोर्ट में ऐसी बातें हैं जो कानून और देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि सरकार को सार्वजनिक बयान देने की बजाय सबूतों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुंबई से अश्विन अघोर की ये रिपोर्ट।
पिछले महीने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए चरमपंथी हमले के बाद सुर्खियों में आए मुंबई के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर जाकिर नाइक फिर सुर्खियों में हैं। मुंबई पुलिस ने उनकी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। ढाका के एक कैफे में चरमपंथी हमले के बाद ये बात सामने आई थी कि एक हमलावर डॉक्टर जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की गतिविधियां तथा डॉक्टर नाइक के भाषणों और लेखों की जांच के आदेश दिए थे। इस जांच की रिपोर्ट मंगलवार को मुख्यमंत्री को सौंपी गई। महाराष्ट्र सरकार मानती है इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं। पुलिस से मिली रिपोर्ट के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा,
मुंबई रेलवे बम विस्फोट में एटीएस ने अरेस्ट किया हुआ आरोपी तिरोज देशमुख है, उसके इनके साथ तालुकात जमात उद दवा के साथ उनके तालुकात, उनके द्वारा या उनके संस्थाओं के द्वारा चलाई जाने वाली लिंक से अलग अलग प्रकार के दहशतगर्दी फैलाने वाले जो लोग हैं उनकी वेब लिंक्स के बारे में जानकारी, हैदराबाद में टेररिस्ट एक्टिविटीज में जिन युवाओं को पुलिस ने अरेस्ट किया था उनके साथ संबंध, इंडियन मुजाहिदीन के साथ तालुकात और अलग अलग जो धर्म है की गई कुछ ऐसी टिप्पणियां कि जिससे दो समाजों में बैर भाव पैदा हो सकता है, उसके बारे में कुछ एविडेंसेस, ऐसी कई चीजें इस रिपोर्ट में दी गई है।
जहां एक ओर सरकार मानती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की गतिविधियां तथा उनके भाषण देश की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं, वहीं जाने माने वकील माजिद मेमन कहते हैं इस रिपोर्ट पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने के बजाय अगर ठोस सबूत है तो सरकार डॉक्टर जाकिर नाइक तथा उनकी संस्था पर कार्रवाई करे। माजिद मेमन ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
देखिए ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में पुलिस को या सरकार को न तो जल्दबाजी करनी चाहिए और न ही इसमें किसी पब्लिक ओपिनियन का या शोर शराबे का दखल होना चाहिए, चाहे वो जाकिर नायक हो चाहे कोई भी हो, और एक खुले मन से जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी मटेरियल है अगर उसके खिलाफ आपके पास कोई ऐसी फैक्ट्स ऐसा सबूत मिलता है कि जिससे कानून के उल्लंघन का मामला बनता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए।
ढाका में हुए चरमपंथी हमले के वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक हज पर गए थे। एक हमलावर ने उनके भाषणों से प्रेरित होने की खबर आते ही उन्होंने खुद को इससे दूर कर लिया और यह भी कहा कि वे जल्द ही भारत लौटकर सारी बातें साफ कर देंगे। लेकिन डॉक्टर नाइक अब तक न भारत लौटे हैं न उनकी ओर से कोई आधिकारिक सफाई दी गई है। वो भारत कब लौटेंगे इस बारे में भी साफ साफ कुछ नहीं कहा गया है। जाकिर नाइक के समर्थकों की देश और विदेशों में एक बड़ी तादाद है, लेकिन उनकी तरफ से बयान देने के लिए अब तक कोई सामने नहीं आया। उनकी संस्था के जनसंपर्क अधिकारी को केरल पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अश्विन अघोर, बीबीसी मुंबई।
इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकारों में खासा तालमेल देखा गया है। इस दोस्ती में पिछले एक महीने में जबरदस्त उछाल भी आया, क्योंकि बांग्लादेश में हुए दो चरमपंथी हमलों ने न सिर्फ यहां की बल्कि भारत सरकार की नींद भी उड़ा रखी है। उम्मीद के मुताबिक भारत ने हर संभव मदद की शुरुआत भी कर दी है। बड़ा सवाल यही है कि क्या दक्षिण एशियाई राजनीति में भारत को बांग्लादेश के हालात पर सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव हाल ही में बांग्लादेश से लौटे हैं। सुनिए उनकी विशेष रिपोर्टों की श्रृंखला की पहली कड़ी।
80 साल के प्रोफेसर अजय रॉय रोज अमरीका से अपनी विधवा बहू और पोती के फोन का इंतजार करते हैं। पिछले साल दिन दहाड़े ढाका में इनके जवान और मशहूर हो चुके ब्लॉगर बेटे अभिजीत राय की हत्या कर दी गई थी। अजय रॉय ने बताया,
When you lose some of your near ones through militancy,
जब आप अपनों को चरमपंथ की भेंट चढ़ते देखते हैं तब दर्द की सीमा पता नहीं चलती। अपने बेटे की तस्वीर देखता हूँ तब दर्द आंसुओं में तब्दील होकर एहसास दिलाता है कि जीने का अब कोई मतलब नहीं रहा।
पिछले 3 वर्षों में बांग्लादेश में 40 ऐसी हत्याएं हुई हैं जिनके पीछे इस्लामिक चरमपंथियों का हाथ बताया गया। लेकिन 1 जुलाई 2016 को वो हुआ जिसने भारत ने हुए मुंबई हमलों की दर्दनाक यादें ताजा कर दी। ढाका के गुलशन इलाके में कैफे में बंधक बनाए गए तो बांग्लादेश ही नहीं पूरी दुनिया सकते में थी। 20 मौतें, दर्जनों घायल और इस मुल्क पर खौफ का साया। गुलशन कैफे पर हमला और एक हफ्ते बाद ही ईद के दिन ढाका के करीब एक मस्जिद पर हमले ने तय कर दिया कि मामला ब्लॉगरों और नास्तिकों की हत्याओं से कहीं आगे निकल चुका है।
हालांकि मुंबई में हुआ है, इंडिया में और जगह है, तो ये हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह होगा। और ये भी नहीं सोचा था कि ये जो लड़के हैं, यंग पीपल, जो सो टू से सेकुलरिस्ट कॉलेज स्कूल में यूनिवर्सिटी में एजुकेटेड, इस रास्ते में जाएगा। अगर 50 बंदा भी रेडिकलाइज हो जाता है विद इन दिस कंट्री तो आपका 50 ह्यूमन बॉम्ब, और ये 50 हो सकता है कि यहाँ इंटरनली औरों को रेडिकलाइज करें, हमें तो पता नहीं है।
विशाल सीमा होने के अलावा भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों की संख्या भी बड़ी है। मौजूदा सरकारों के बेहतरीन संबंध होने के बावजूद भारत सजग हो चुका दिखता है।
वीना सिकरी बांग्लादेश में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त रह चुकी हैं।
पहले भी हम ये देख रहे थे कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका असर वेस्ट बंगाल में आ रहा था और अब तक आ रहा है। जब भी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी अपने बांग्लादेश में जमात इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लिया करती थी तो वो लोग वेस्ट बंगाल में आके बस जाते थे।
शेख हसीना की अवामी लीग सरकार पर बढ़ते हुए कथित इस्लामिक चरमपंथ पर गंभीर न रहने के अलावा राजनीतिक हितों को तरजीह देने के आरोप लगे हैं।
लेकिन बांग्लादेश के सुरक्षा मंत्री हसन उल हक इनू इन सभी आरोपों से इनकार करते हैं।
For the last 20 years, we are experiencing this phenomenon.
हम 20 साल से चरमपंथ झेल रहे हैं, लेकिन गुलशन और शोलाकिया पर हमले दूसरे किस्म के थे। अब तक इनसे निपटने में हम सफल रहे हैं।
2013 के बाद से शुरू हुई हत्याओं का सिलसिला अब गंभीर चरमपंथी घटनाओं में बदल रहा है। सबसे बड़े और करीब पड़ोसी भारत की बेचैनी बढ़ना भी लाजमी है। नितिन श्रीवास्तव, BBC ढाका।
नमस्कार भारत। शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़ व मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ। इरोम शर्मिला की 16 साल पुरानी भूख हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन सशस्त्र सेना बल विशेषाधिकार कानून हटाने को लेकर मणिपुर में बहस जारी है। अफ्सपा के खिलाफ मुहिम इरोम ने साल 2000 में इम्फाल के मालोम गांव से शुरू की थी और हथियार था भूख हड़ताल। लेकिन अब अपनी भूख हड़ताल तोड़ने के बाद इरोम का कहना था कि वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। मणिपुर के मालोम गांव से BBC संवाददाता वंदना की ये रिपोर्ट।
आज की सुबह इरोम शर्मिला के लिए एक नई सुबह होगी, बिना भूख हड़ताल वाली। नाक में नली नहीं होगी, जीभ पर खाने या पीने के किसी चीज का स्वाद जाएगा 16 सालों बाद। इरोम शर्मिला की भूख हड़ताल तोड़ने की खबर उस छोटे से गांव मालोम में भी पहुंची जहां से शर्मिला ने भूख हड़ताल पर जाने का प्रण किया था। इसी गाँव में सेना पर 10 लोगों को मारने का आरोप लगा था। इम्फाल से 7-8 किलोमीटर दूर मालोम में हमारी मुलाकात 64 साल की चंद्रजीनी से हुई, जिन्होंने अपने दो बेटों और बड़ी बहन को गवाया था। नम आंखों और रुंधे हुए गले से चंद्रजीनी ने उस शाम को बयां किया।
दोपहर 3:15 की बात होगी। बड़ा बेटा मेरी बहन को छोड़ने के लिए बस स्टैंड के लिए निकला तो 17 साल का छोटा बेटा ट्यूशन पढ़ने के लिए। अचानक बम फटने की आवाज़ आई और फिर गोलीबारी की। चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थी। पूरा गांव खाली करवा लिया गया। रात के अंधेरे में मैं थकी हारी सड़क पर ही बैठ गई तो मेरे पैरों में कुछ चिपक गया। किसी का जमा खून था वो। सुबह पता चला कि दोनों बेटे मारे गए हैं। 17 साल का वो बेटा भी जिसे बचपन में राजीव गांधी ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया था।
इरोम इसी गांव में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठी थी। हालांकि उन्हें 15-20 साल से जानने वाले और उनके साथी रहे बबलू कहते हैं कि इरोम अब पहले जैसी नहीं रही।
15 साल की अनसन में बहुत बदल गया इरोम शर्मिला। प्रिजन के अंदर बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, गीता पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, बाइबल पढ़ा है। पहला तो हम लोग से बहुत पूछे थे कोई भी फैसला करने में। आजकल तो एकदम इसका एक इंडिपेंडेंट माइंड हो गया। छोड़ने के बाद भी हमको पूछा ही नहीं। तो अनसन जाने के पहले तो वो जाके आई स्टिल रिमेंबर दिस दैट वाज November 5th, 2000 जो एक साइकिल में आके मेरे घर में आया। बहुत वीक देख रहा था तो मेरा ड्राइंग रूम में आके बोला है, ब्रदर अब सफा नहीं निकलेगा तो मैं अनसन में जा रहा हूँ, मैं भूख हड़ताल में जा रहा हूँ।
वैसे 16 साल तक एकाकी जिंदगी बिताने वाले इरोम शर्मिला से पहले जैसी ही बनी रहने की उम्मीद रखना कितना जायज है, ये एक अलग ही बहस है। इरोम की मुख्य लड़ाई अफ्सपा कानून के खिलाफ रही है और उनकी इस मांग में मणिपुर के लोग उनके साथ हैं।
हम मणिपुर लोगों को वो लोग हमारे पास इम्पोज करते हैं, फोर्सफुली इम्पोज स्टेप मदर ट्रीटमेंट क्यों हम सबको। हम भी प्रजा है वो दिल्ली की तरह, हम भी प्रजा है वो चंडीगढ़ की तरह, तो उनमें नहीं हमें क्यों, हमें क्या प्रॉब्लम है। 16 years इज नॉट अ जॉक। व्हेन इट कम्स टू दिस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आई वांट इट टू रिमूव फ्रॉम आवर लैंड, नॉट ओनली फ्रॉम मणिपुर, फ्रॉम द होल ऑफ इंडिया।
अफ्सपा कानून पर लोगों को इरोम का साथ चाहिए, लेकिन भूख हड़ताल के मुद्दे पर सब लोग अब भी इरोम के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं दिखते। इन विरोधी स्वरों के बीच मालोम गाँव के चंद्रजीनी की बात मेरे कानों में गूंज रही है, जिसने दो बेटे गंवाए हैं। चंद्रजिनी ने मुझसे जाते जाते कहा कि गम में डूबी एक माँ होने के नाते भी मैं 2 दिन भूखी नहीं रह सकी थी। इरोम तो 16 साल भूखी रह गई। वंदना, BBC, मालोव गांव, इम्फाल।
सीधे चलते हैं मणिपुर BBC संवाददाता वंदना के पास। वंदना, मेरे साथ स्टूडियो में हरिता कांडपाल बैठी हैं और यहाँ पर जो भी अखबार लेके बैठी हैं उधर सबसे पहली खबर, जो पहले पन्ने पर खबर मुझे दिखाई दे रही है वो है इरोम शर्मिला की, लेकिन वहाँ जो अखबार छपे हैं उन्होंने कितनी तरजीह दी है इस खबर को?
जी सुशीला, बिल्कुल, यहाँ भी मेरे पास सुबह सुबह 3 ही अखबार पहुँच पाए हैं और तीनों में खबर यही है। जो इम्फाल फ्री प्रेस यहाँ का मुख्य अखबार है उसने वो बड़ी सी तस्वीर छापी है जहाँ वो शहद चाट रही हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं, तो वो तस्वीर के साथ उन्होंने हेडलाइन छापी है। हालांकि बहुत हैरानी की बात है कि कल ये जो मुख्य अखबार है, जब बड़ा दिन था वो छूटने वाली थी, तो इस इरोम शर्मिला की खबर कहीं नहीं थी, जो यहाँ पे पत्रकार भी चर्चा कर रहे थे। और खैर, अगर दूसरे अखबारों की बात करें, द पीपल्स क्रॉनिकल, तो उन्होंने बहुत ही एक खूबसूरत ढंग से तस्वीरों से दिखाया है कि जब वो पहली बार हड़ताल पे बैठी थी, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें, और फिर सिलसिलेवार कैसे वो आगे बढ़ती गई, उनके नाक में नली है, और आज जब वो कल जो उन्होंने शहद के साथ चाट के खोला, ये खबर उन्होंने छापी है। और संगाई एक्सप्रेस है, उसने भी बड़ी सी खबर छापी है तस्वीर के साथ, साथ में ये भी छापा है कि कैसे कल शाम को जब वो उनको एक जगह ले जाया गया, 2 जगह बल्कि, और दोनों जगह उन्हें विरोध झेलना पड़ा, उन्हें रहने नहीं दिया गया, जो लोग नहीं चाहते थे कि वो भूख हड़ताल तोड़े। और उसके साथ ही छोटा सा जो कल ही क्विट इंडिया मूवमेंट का कांग्रेस का एक उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, वो दोनों साथ साथ में हैं। और एडिटोरियल्स भी आज तीनों अखबारों में इरोम शर्मिला पर ही हैं। एक का शीर्षक है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो एक तरह से इरोम शर्मिला की ही तीनों अखबारों में मुख्यता है। और अगर जाते जाते बता सकूं, एक की जो हॉकी की इंडिया की जीत है कल, उसमें 2 मणिपुर के बड़े खिलाड़ी थे, जिन्होंने जीत दिलवाई, तो उसकी खबर भी तस्वीर के साथ छापी है दोनों मणिपुर के खिलाड़ियों के नामों के साथ। तो लब्बोलुआब यही है यहाँ की अखबारों का।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मणिपुर से समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए। और यहाँ पर हरिता इंतजार कर रही है अपनी बारी का। हरिता, आज अखबार क्या कहते हैं? हालांकि जो अरुणाचल प्रदेश के CM हैं जिन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, उनकी खबर तो उधर अखबारों में कहीं नहीं दिखाई दे रही है।
जी सबसे पहले बात इरोम शर्मिला की करें, सारे ही अखबार जो दिल्ली से छपते हैं उनकी प्रमुख जो खबर है वो ये दिख रही है, और वही तस्वीर जिसका जिक्र वंदना ने किया, शहद चाटती हुई आँखों में आंसू लिए इरोम शर्मिला, ये नज़र आ रहा है। और इसके अलावा एक जो खबर है दिल्ली के अखबारों में छपी हुई, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिको पुल ने कल फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, इसकी खबर मैं सारे अखबारों में देख रही हूँ। द हिंदू ने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिको पुल ने आत्महत्या की है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटाकर नाबाम तुकी को फिर से सत्ता सौंप दी थी। इस बात को अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और उनका शव उनके घर यानी मुख्यमंत्री आवास पर जहां वो रह रहे थे वहां से मिला है। उन्होंने ये आवास खाली नहीं किया था, उन्होंने समय मांगा था। वो 47 वर्षीय थे और उनके पास से एक नोट भी मिला है। हालांकि ये भी लिखा है अखबार ने कि पुलिस के मुताबिक ये सुसाइड नोट नहीं माना जा सकता है। वहीं द पायनियर ने लिखा है कि उनकी आत्महत्या की खबर जैसे ही आग की तरह फैली तो उनके समर्थकों ने सड़कों पर उतर विरोध प्रदर्शन किया और नए मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि उनको मजबूर किया गया है आत्महत्या करने के लिए। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ, इसमें लिखा है कि 27 दलित परिवारों को अपना गांव छोड़कर एक दूसरी जगह जाके रहना पड़ा और ये सब छुआछूत के शिकार हैं। ये डीसा तालुका की खबर है जहाँ के एक गाँव घड़ा से 27 दलित परिवार लगभग 2 साल पहले सोदापुर जाके रहने को मजबूर हो गए हैं। तो कहा गया है कि एक तरह से ये अपने ही राज्य में शरणार्थी बन गए हैं। और इसके अलावा एक छोटी सी खबर जिसका मैं जिक्र अभी कर देना चाहती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने माना है कि कुछ अवांछनीय तत्व ऐसे हैं जो खुद को गोरक्षक बता रहे हैं और सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर इन्हें गौशाला बनाने के लिए अपने नाम इस ज़मीन को करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे कई अर्जियाँ लंबित हैं और ये सिरदर्द बन गया है उनकी सरकार के लिए।
जी, तो नरेंद्र मोदी के साथ के बाद जो है वसुंधरा राजे बोल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए। और अब बात रियो की। रियो ओलंपिक से कल अच्छी खबर आई जहां मुक्केबाज विकास कृष्ण यादव प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, वहीं इससे पहले हॉकी में भारत ने अर्जेंटीना को हराया। रियो से पूरी जानकारी के साथ नॉरिस प्रीतम।
बीबीसी ओलंपिक रियो अपडेट।
भारत के मुक्केबाज विकास कृष्ण ने अमेरिका के चार्ल्स कॉनवेल को आसानी से 3-0 के स्कोर से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। 75 किलोग्राम वर्ग की बाउट में विकास ने एक सोची समझी रणनीति के अनुसार लड़ते हुए शानदार जीत हासिल की।
हालांकि 25 एक्सचेंज तो नॉर्मली था, 2-4 मेरे को लगे, 2-4 मैंने उसके मारे, लेकिन जो मैंने मारे ब्लो बिल्कुल फास्ट मारे हैं। जी, मेरे को ये था कि मैं उसको डोमिनेट नहीं होने दूं अपने आप, और स्टार्टिंग के दौरान जीते तो मेरा टारगेट पूरा हो चुका था, लास्ट राउंड सिर्फ मेरे को टाइम पास करना था।
इससे पहले दिन में भारत ने अर्जेंटीना को हॉकी में 2-1 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में जाने की उम्मीद बरकरार रखी हुई है। एक तेज मुकाबले में भारत के लिए चिंगलसेना और कोथाजीत ने 1-1 गोल किया, जबकि अर्जेंटीना के लिए एकमात्र गोल गोंजालो ने किया। आज की जीत के बाद भारत पूल बी में दूसरे स्थान पर है। दिन की शुरुआत हुई निराशा से जब दत्तू भोकनाल रोइंग की सिंगल स्कल में क्वालिफाई ना कर सके। उसके बाद 25 मीटर पिस्टल इवेंट में हीना सिद्धू ने भी निराश किया, लेकिन तीरंदाजी में अतानु दास की जीत का सिलसिला जारी है। अतानु ने पहले नेपाल के जीत बहादुर मुक्तन को हराया और फिर क्यूबा के पेरेस पुंतेस को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। कल सुबह दिन की शुरुआत निशानेबाज जीतू राय करेंगे। जीतू से उम्मीद है कि वो 50 मीटर पिस्टल इवेंट में पदक लें। उनके साथ प्रकाश नंजप्पा भी इवेंट में हिस्सा लेंगे। साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। ये इस टूर्नामेंट का उनका सबसे मुश्किल मैच होगा। साथ ही भारतीय खेमे की नजरें होंगी मुक्केबाज मनोज कुमार पर भी, जो अपनी पहली बाउट लड़ेंगे। नॉरिस प्रीतम, रियो ओलंपिक्स, BBC ब्राजील।
Real update.
BBC.
इधर भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 234 रन बना लिए हैं। आर अश्विन 75 रन और रिद्धिमान शाह 46 रन पर नॉट आउट रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे विश्व भारती में 8 बजे दोबारा मुलाकात करेंगे और उसमें बात करेंगे बिहार में शराबबंदी के खिलाफ सामूहिक जुर्माना लगा है एक गांव में, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन अब फिलहाल 8 बजे तक मुझे दीजिए अनुमति।